आपने पिछला पाठ सुना होगा और नोटबुक में बहुत सारी चीज़ों को लिखा भी होगा। मैं आज फिर उसके आगे की बात बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य के विषय पर अभी चर्चा चल रही है हम लोगों की, इसमें जो प्रामाण्य शब्द है इसका अगर पर्यायवाची शब्द लेना हो तो प्रामाण्य का पर्यायवाची शब्द आप दो लिख लीजिए, एक तो प्रमात्व और दूसरा याथार्थ्य। प्रमात्व और याथार्थ्य, ठीक है। प्रामाण्य के दो पर्यायवाची शब्द हो गए प्रमात्व और याथार्थ्य। तो स्वतः प्रामाण्य होता है ऐसा कहना है मीमांसक का, और परतः प्रामाण्य होता है ऐसा कहना है न्यायिक का। स्वतः प्रामाण्य होता है माने प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण होता है, और परतः प्रामाण्य होता है मतलब प्रामाण्य का परतः ग्रहण होता है। अब ये स्वतः ग्रहण क्या है और परतः ग्रहण क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको पिछले पाठ में समझाया था कि ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही अगर प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है, ज्ञान ग्राहक सामग्री और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री अगर दोनों समान है तो वह स्वतः प्रामाण्य माना जाएगा, और जहाँ पर ज्ञान ग्राहक सामग्री भिन्न है और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री भिन्न है वहाँ पर परतः प्रामाण्य माना जाता है। ये मैंने समझाया था पिछले पाठ में। आज उसको शास्त्र की पंक्ति के अनुसार जो है स्वतः प्रामाण्य की व्याख्या को समझना है। इसके लिए आप लोग नोट करिए कि स्वतो ग्राह्य क्या है, किसको कहते हैं, और परतो ग्राह्य किसको कहते हैं। तो एक के लिख लेने से दूसरा समझ में अपने आप आ जाएगा। तो लिखिए स्वतो ग्राह्यत्वम। स्वतो ग्राह्यत्वम माने स्वतः ग्रहण होने के योग्य। तो स्वतो ग्राह्यत्वम किम, ये प्रश्न बनाइए पहले। स्वतो ग्राह्यत्वम किम माने स्वतः, ये स्वतः प्रामाण्य ग्रहण होता है इसका मतलब क्या होता है, स्वतो ग्राह्यत्वम किम। अब उसका उत्तर लिखिए, ज्ञान ग्राहक सामग्री, ज्ञान ग्राहक सामग्री, ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम, मात्र ग्राह्यत्वम। फिर से बोलता हूँ, स्वतो ग्राह्यत्वम नाम किम, ये प्रश्न हो गया। उत्तर में लिखिए, ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम। लिख लिया होगा आपने, ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम। अब इस ये जो अभी आपने लिखा इस पर गौर करिए, ये क्या कहता है कि ज्ञान ग्राहक सामग्री जो भी है उसी से अगर ग्राह्य हो, क्या ग्राह्य हो माने प्रामाण्य ग्राह्य हो, तो उसको हम स्वतो ग्राह्य प्रामाण्य कहते हैं। ज्ञान मैंने पहले समझाया ही था ना कि ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही अगर प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है तो उसको हम स्वतो ग्राह्य प्रामाण्य कहेंगे। तो वही यहाँ लिखा है कि ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम स्वतो ग्राह्यत्वम माने ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र से माने उससे अलग और किसी से नहीं, केवल उसी से, ज्ञान केवल ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही अगर प्रामाण्य का ग्रहण होता है तो उसको हम स्वतो ग्राह्य प्रामाण्य कहेंगे, ठीक है। अब इसके विपरीत कर लीजिए कि ज्ञान ग्राहक सामग्री से अलावे सामग्री की अगर जरूरत होती है, उससे भिन्न सामग्री की जरूरत जहाँ होती है प्रामाण्य के ग्रहण में, वह परतः प्रामाण्य माना जाएगा। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम स्वतो ग्राह्यत्वम, प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वम, प्रामाण्य का स्वतो ग्राह्यत्व क्या है कि ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र से उसका अगर ग्रहण हो तो वह प्रामाण्य का स्वतो ग्राह्यत्व होता। तो चलिए आज शास्त्र की पंक्ति के अनुसार जो है हमने समझा कि स्वतो ग्राह्य प्रामाण्य क्या है और परतो ग्राह्य प्रामाण्य क्या है। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र से जिसका ग्रहण हो वह है स्वतो ग्राह्य प्रामाण्य, और ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री से जिसका ग्रहण हो वह है परतः परतो ग्राह्य प्रामाण्य, चाहे परतः ग्राह्य प्रामाण्य। तो इस तरह से स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य शब्द के बारे में जानकारी हमने ली। अब हमें ये समझना है कि न्याय दर्शन में और मीमांसा दर्शन में किस तरह से जो है ये प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण होता है या प्रामाण्य का परतः ग्रहण होता है। तो पिछले सत्र के पाठ में आपने ये देखा था कि पदार्थ का जो ज्ञान होता था, प्रमात्मक ज्ञान होता था, वह प्रमाण से होता था। तो पदार्थ ज्ञान की, ये जो ज्ञान की मैंने तीन सामग्री बताई थी, उत्पादक सामग्री, ग्राहक सामग्री और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री, तो पदार्थ ज्ञान की जो उत्पादक सामग्री है ना, वह प्रमाण है। प्रमाण से ही पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उत्पादक सामग्री का मतलब हुआ कि जिन कारणों से कोई उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं उत्पादक सामग्री। तो प्रमाण ही वह कारण है जिस कारण से प्रमा की उत्पत्ति होती है। तो प्रमा की उत्पत्ति की कारण सामग्री जो है वह हो गया प्रमाण। तो प्रमाण जो है वह है पदार्थ ज्ञान की उत्पादक सामग्री, ठीक है। अब तो ये आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि कैसे जो है प्रमाण से प्रमा उत्पन्न होती है, अर्थात प्रमाण से कैसे पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, इस बात को आपने पिछले सत्र में पढ़ा था। अभी आपको ये पढ़ना है कि चलिए ये तो ठीक है कि पदार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया किससे, प्रमाण से उत्पन्न हो गया। अब उस पदार्थ ज्ञान का ग्रहण कैसे होता है और फिर उस पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण कैसे होता है, ये दो बिंदु विचारनी है अभी के पाठ में। पहला जो बिंदु था कि पदार्थ ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, तो वह प्रमाण से उत्पन्न होता है, और प्रमाण से कैसे पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है वो आपने पिछले सत्र में पढ़ा। अभी हमें पढ़ना है कि पदार्थ ज्ञान चलिए उत्पन्न हो गया, अब पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होने के बाद पदार्थ ज्ञान का ग्रहण कैसे होता है और पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण कैसे होता है, इन दो बिंदुओं को जो है अभी हमें समझना है। अब इन दोनों बिंदुओं को समझने के लिए भिन्न भिन्न मत हैं, न्याय दर्शन का भिन्न मत है, मीमांसा दर्शन का भिन्न मत है। मैं मीमांसा दर्शन की ही मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तर्क भाषा में मीमांसा दर्शन का ही मत दिया गया है और उसका खंडन करके न्याय मत का समर्थन किया गया है। बाकी जो सांख्य योग वाले हैं या वेदांत वाले हैं, इन सबों के मत का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा करना जो है अनावश्यक समझता हूँ। केवल मीमांसक की मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपके ग्रंथ में वही है। तो ठीक है, तो फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको कि ज्ञान की जो तीन स्थिति है, उत्पत्ति वाली स्थिति मान ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का ग्रहण और ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण। तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है प्रमाण से, जो कि पहले सत्र में पढ़ा। अब उस ज्ञान का माने पदार्थ ज्ञान का ग्रहण कैसे होगा और पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण कैसे होगा, प्रामाण्य का मतलब यथार्थ का, वह जो पदार्थ ज्ञान है वह यथार्थ है कि अयथार्थ है, इसका ग्रहण कैसे होगा, इन दो बिंदुओं को आपको सीखना है। तो चलिए, आपने कापी कलम रखा हुआ है तो आप इसको लिखिए। सबसे पहले हम न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं कि न्याय दर्शन ने जो है इसको क्या माना है, कैसे माना है। तो न्याय दर्शन में तो दो तरह का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को प्रमा भी कहते हैं, प्रमाण भी कहते हैं, और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा भी कहते हैं और अप्रमाण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रमा शब्द से नहीं कह करके, अप्रमा शब्द से नहीं कह करके हम प्रमाण और अप्रमाण शब्द कहेंगे। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर प्रमाण और अप्रमाण का मतलब यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान है, ठीक है, क्लियर। अब चलिए, तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य इसका कैसे ग्रहण होता है, इसके बारे में अब हमें न्याय का मत जो है वो बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अते आप नोट करिए, प्राम दूसरी वाली जो स्थिति है ना, पदार्थ ज्ञान का ग्रहण वाली स्थिति, और तीसरी स्थिति है पदार्थ के प्रामाण्य ग्रहण की स्थिति, तो इन दोनों स्थितियों को अलग अलग लिखना है। तो पहले लिखिए ऊपर में न्याय मत, न्याय मत लिख लिया आपने, न्याय मत, न्याय मत लिख करके डैश दीजिए, फिर दो स्थिति लिखिए, एक लिखिए पदार्थ ज्ञान ग्रहण, पदार्थ ज्ञान ग्रहण, पदार्थ ज्ञान ग्रहण, और दूसरी स्थिति लिखिए पदार्थ प्रामाण्य ग्रहण। मैंने जो दो बिंदुओं की बात की थी कि ये पदार्थ ज्ञान का ग्रहण कैसे होता है और पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण कैसे होता है, तो उन दो बिंदुओं को लिख लीजिए। न्याय मत में पदार्थ ज्ञान ग्रहण कैसे, पदार्थ ज्ञान ग्रहण लिख लिया आपने, दूसरा लिखिए पदार्थ प्रामाण्य ग्रहण, ठीक है। अब इसके लिखने के बाद ये जो पदार्थ ज्ञान ग्रहण है उसके नीचे एक दंडा दे करके, नीचे की ओर दंडा दे करके लिखिए अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय क्या लिखेंगे, अनुव्यवसाय। ये किसके नीचे आप दंडा दे करके लिख रहे हैं, प्रामाण्य के नीचे ये जो है ना, आपने ऊपर में लिखा न्याय मत लिखा, फिर लिखा आपने ये पदार्थ ज्ञान ग्रहण और पदार्थ प्रामाण्य ग्रहण, पदार्थ ज्ञान प्रामाण्य ग्रहण, ठीक। तो पदार्थ ज्ञान ग्रहण के नीचे दंडा दे करके लिखिए अनुव्यवसाय, लिख लिया, और उस अनुव्यवसाय के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए मानस प्रत्यक्ष, अनुव्यवसाय के आगे ब्रैकेट में लिखिए मानस प्रत्यक्ष। मतलब ये हुआ कि पदार्थ ज्ञान तो होता है प्रमाण से, पदार्थ ज्ञान का ग्रहण जो होता है वो अनुव्यवसाय नामक मानस प्रत्यक्ष से होता है। पदार्थ ज्ञान का ग्रहण कैसे होता है, अनुव्यवसाय से होता है, या फिर ये कह लीजिए कि मानस प्रत्यक्ष से होता है। तो इसको दोनों शब्दों से कहा जाता है, अनुव्यवसाय से पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है और इसको मानस प्रत्यक्ष से पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है, ये दोनों तरीके से बताया जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखने के लिए कहा मानस प्रत्यक्ष, ठीक है। अब दूसरा जो बिंदु है कि पदार्थ ज्ञान प्रामाण्य ग्रहण, उसके नीचे एक दंडा डाल करके और फिर आप लिखिए अनुमान, क्या लिखेंगे, अनुमान। जैसे उसमें अनुव्यवसाय लिखा ना, इसके नीचे लिखिए प्रामाण्य ग्रहण के नीचे अनुमान। तो इस तरह से क्या हुआ, अभी ये देखिए कि न्याय के मत में पदार्थ ज्ञान का जो ग्रहण होता है वो अनुव्यवसाय से होता है और पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का जो ग्रहण होता है वह अनुमान से होता है, क्लियर। अब यहाँ देखिए कि ज्ञान ग्राहक सामग्री दोनों की अलग अलग हो गई, पदार्थ ज्ञान ग्राहक सामग्री है अनुव्यवसाय और पदार्थ ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री जो है वह है अनुमान। तो सामग्री के अलग हो जाने के कारण यही है परतो ग्राह्य, यही है परतः प्रामाण्यवाद। कि यहाँ परतः प्रामाण्यवाद में क्या होता है कि ज्ञान का ग्रहण भिन्न सामग्री से होता है और प्रामाण्य का ग्रहण जो है वह भिन्न सामग्री से होता है। तो यहाँ पर ज्ञान का ग्रहण जो हुआ वो हुआ अनुव्यवसाय से और ज्ञान प्रामाण्य का जो ग्रहण हुआ वह हुआ अनुमान से। तो भिन्न भिन्न सामग्री दोनों की हो गई और भिन्न सामग्री से जहाँ पर प्रामाण्य का ग्रहण हो उसी का नाम है परतः प्रामाण्य अथवा परतः ग्राह्य प्रामाण्य। तो ये मत है न्याय का, न्याय के मत में पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है अनुव्यवसाय से और पदार्थ ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण होता है अनुमान से। दोनों भिन्न भिन्न सामग्री से होता है, भिन्न भिन्न कारण से, सामग्री माने कारण, भिन्न भिन्न कारणों से ये दोनों होता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये अनुव्यवसाय क्या है, और अनुमान क्या है। तो अनुमान क्या है ये तो आपने पीछे पढ़ा है अनुमान प्रमाण के संदर्भ में कि अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान परार्थानुमान, उसमें पंचावय वाक्य होते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो वो अनुमान है। और अनुव्यवसाय क्या है, तो अनुव्यवसाय को समझने के लिए आपको व्यवसाय समझना होगा। ठीक है, तो ये व्यवसाय क्या है, तो देखिए अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रामाण्य की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रामाण्य का पर्यायवाची शब्द हमने क्या बताया, याथार्थ्य अथवा प्रमात्व। तो यह जो प्रामाण्य है यह एक धर्म है, प्रमाण में रहने वाला जो धर्म है उसी का नाम है प्रामाण्य। ठीक है, धर्म जो है बिना धर्मी के रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। तो प्रामाण्य रूपी जो धर्म है वह जिस धर्मी में रहता है उसी का नाम है व्यवसाय। ठीक है, तो यहाँ प्रामाण्य किस में रहता है, तो यथार्थ ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान रूपी धर्मी में प्रामाण्य रूपी धर्म रहता है। तो इस तरह से प्रामाण्य का आश्रय कौन हो गया, ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया। तो वह जो ज्ञान है आश्रय उसको व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, और उस व्यवसाय का जब मानस प्रत्यक्ष होता है, उस व्यवसाय को जब हम मन ही मन समझते हैं तो उसी का नाम है अनुव्यवसाय। क्या हुआ, प्रामाण्य तो आप समझ रहे हैं क्या होता है, तो प्रामाण्य धर्म है, प्रामाण्य धर्म जिसमें रहे उस ज्ञान को पदार्थ, उस पदार्थ ज्ञान को व्यवसाय कहते हैं। प्रामाण्य जिस पदार्थ ज्ञान में रहे उस पदार्थ ज्ञान को व्यवसाय कहते हैं। और उस पदार्थ ज्ञान रूपी जो व्यवसाय है उसको जो मन ही मन समझा जाता है, मानस का जो मानस प्रत्यक्ष होता है उसी का नाम है अनुव्यवसाय। तो इस तरह से अनुव्यवसाय के द्वारा, मानस प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण ये पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है, और अनुमान के द्वारा जो है प्रामाण्य का ग्रहण होता है। इसी तरह से अप्रामाण्य में भी जो है ना यही स्थिति है। जैसे प्रामाण्य का ग्रहण होता है मानस इससे, प्रामाण्य का ग्रहण होता है अनुमान से, ऐसे ही अप्रामाण्य का ग्रहण भी होता है अनुमान से, इसमें अंतर नहीं है। इसी तरह से पदार्थ ज्ञान का ग्रहण हो गया अनुव्यवसाय से, तो पदार्थ ज्ञान का ग्रहण हुआ अनुव्यवसाय से, और प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ग्रहण हो गया अनुमान से, ऐसा मानना है न्याय के मत में। फिर से समझ लीजिए अनुव्यवसाय क्या होता है, तो व्यवसाय का जो मानस प्रत्यक्ष है, व्यवसाय का जो मन में समझना होता है उसका नाम है अनुव्यवसाय। व्यवसाय क्या है, तो वह ज्ञान जिस ज्ञान में प्रामाण्य रहता हो उस ज्ञान को व्यवसाय कहा जाता है, और व्यवसाय का मानस प्रत्यक्ष ही अनुव्यवसाय कहलाता है। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पाठ में हम मीमांसक का मत समझेंगे।